शांति। मुरली में सबसे पावरफुल पॉइंट कौन थी सीमा बहन? सेवा और स्वपुरुषार्थ की संपन्न। और अचानक कुछ भी पेपर आ जाए क्या हो आगे? और कुछ। हेलो, अचानक कोई भी समस्या आ जाए, हम अपने को भी सेफ रख सकें और दूसरों को भी मदद कर सकें। इसमें सारी बातें आ गई बाबा की। तो हमें ऐसा पावरफुल बनना है। बाबा चैलेंज कर रहा है, अचानक कुछ आ जाए नहीं, आएगा और आ रहा है, बहुतों के पास आ रहा है। हम बहुत स्ट्रांग रहें, अपने को सेफ रखने का अर्थ है हमारी स्थिति में हलचल न हो, हम अपनी शक्तियों को भूल न जाएं। तो पहली चीज हम आज निकालते हैं पॉइंट्स, क्या क्या हम याद रखें। पहले से ही हम कुछ चीजें पक्की कर दें, कम से कम 5 बातें जो हमें परिस्थितियों के समय स्थिति को अचल अडोल रखने में बहुत बड़ा काम करें। निकालेंगे 5 पॉइंट और इनकी खूब प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज रहेगी। विनाश की ओर हम तेजी से बढ़ रहे हैं। विनाश से पहले क्या होगा? विनाश से पहले सबको हिसाब किताब चुक तू करने होंगे। प्राकृतिक प्रकोप बहुत होंगे, वो तो विनाशी है, पर हिसाब किताब चुक तू करना ही सबसे बड़ी परीक्षाएं होंगी। जिसने बहुत लंबे समय से अभ्यास नहीं किया, वो उन परिस्थितियों में बहुत ज्यादा डाउन हो जाएंगे, और जिनका लंबे काल का अभ्यास है, वो परिस्थितियों में पहले अपनी स्थिति को संभाल पाएंगे, फिर योग युक्त हो पाएंगे, फिर दूसरों को मदद करेंगे। क्या क्या याद रखेंगे? जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, फिर आगे आप सोचेंगे। भगवान उवाच, तुम्हारे अंदर शक्ति है हर समस्या को नष्ट करने की। पक्का कर दें, तुम्हारे अंदर शक्ति है हर समस्या को नष्ट करने की। जब कोई भी विकराल बात आती है तो मनुष्य का मन एकदम विचलित होकर, किसी का भयभीत हो जाता है, किसी का इतना विचलित हो जाता है कि ज्ञान पूरी तरह भुला देता है। दूसरी बात क्या याद करेंगे? बोलो रमेश, बोलना है सबको। गहन चिंतन में चलो, मेरे सामने समस्या आ गई तो मैं क्या क्या याद करूं जो स्थिति अच्छी रहे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, बाबा की शक्तियां मेरे पास हैं, स्वयं बाबा छत्र बनकर मेरे सिर पर है, 1000 भुजाओं सहित मेरे साथ है। बात पक्का करें, और कुछ न हो तो इसको याद करने लगे, केवल रिपीट करने लगे, ठीक है। अब तीसरी बात, हाँ, ड्रामा को किस रूप में लेंगे? कल पहले भी आया, अभी भी आया, और कुछ बोलो इसके साथ। कल पहले मैंने इस समस्या को पार किया है, अभी भी ये पार हो जाएगी। आई थी इतना ही नहीं, जाएगी भी। सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मन को रिलैक्स करें, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। चौथी बात, सोचो पीछे वाले, केवल श्रोता बन के नहीं आना है, चिंतक। मेरा साथी कौन है, बाबा ने वचन दिया है, मैं बैठा हूँ, तुम बेफिकर बादशाह बन जाओ। मैं हूँ ना, मेरे होते तुम परेशान क्यों, जब मैं नहीं रहूंगा तब परेशान होना, मैं हूँ। चिंतन में लाए से, ठीक बात है ना, बेफिकर बादशाह। जब भगवान कह रहा बेफिकर बादशाह बन जाओ, तो हम फिक्रों में चिंताओं में क्यों समय व्यतीत करें। और आगे चलो, पांच हाँ वो हो गया, हजार भुजा वाले का साथ है। और सुनाओ, मैं कल का विजयी रतन हूँ। हमें अपनी शक्तियों को जागृत करना है। शक्तियाँ हमारे पास होती हैं, लेकिन समस्याएं उन्हें सुला देती हैं, क्योंकि हमें सब कुछ भुला देती हैं। स्मृति स्वरूप होना है, मैं कल्प का विजयी रत्न हूँ, इन समस्याओं पर मेरी विजय होगी ही। और एक छठी बात की प्रैक्टिस करेंगे, समर्पण भाव, सब कुछ तेरा। बहुत हल्के भक्ति में जैसे है, जैसे तुम रखो वैसे ही रहेंगे। तेरा भाना मीठा लागे, जिन जिनकी ये भाषा वो जानते हैं, पंजाबी है ना। बस तुम जैसे रखोगे हम उसमें खुश रहेंगे। कुछ लेना हो ले जाओ, छोड़ना हो छोड़ दो, हैं? ऐसा समर्पण भाव बाबा के लिए, जैसा तुम चाहो हम तो उसमें खुश हैं। हमारी जीवन की नैया तुम्हारे हाथों में है, जैसे खेदो उसको हम खुश हैं। ये बातें हमारी स्थिति को बिगड़ने नहीं देंगी, बार बार संभालेंगे अपने को, क्योंकि परिस्थितियां विकराल आती हैं और अति विकराल आएंगी। हम इस बात के बारे में सचेत रहेंगे, जागरूक जागृत। समस्याएं भयानक आएंगी। कैसी कैसी समस्याएं होती हैं? देह की सबसे भारी होती है, देह की। अचानक चलते चलते कैंसर हो गया, भयानक। ये बहुत हो रहा है ना आजकल। और कैंसर ऐसी बीमारी हो रही है कि उसके लक्षण ही नहीं होते, जब बहुत हो जाता है तब डॉक्टरों को पता लगता है कैंसर हो गया, सीवियर हो गया, अब ये स्थिति सीरियस है, अब तो ये करो वो करो, जी जाए तो अच्छा है। अचानक परिस्थिति आती है ना। एक माता की मैं सुनाई कल भी बात, दिल्ली की, मैं से बात करती रहती थी, उसके ससुर को तकलीफ थी, बहुत अच्छे अभ्यास किए, स्थिति को संभाला, मृत्यु हो गई। 8 दिन के बाद ही पति को पता नहीं, छाती वाती में दर्द हुआ, ले गए हॉस्पिटल, चेकअप जो हुआ सीवियर कैंसर, और 15 दिन में मृत्यु। संभल भी नहीं पाई, ऐसे में बहुत बहुत ऊंची स्थिति चाहिए ना। बेचारी ने रखी बहुत ही ऊंची, पिछले साल आई यहाँ, मुझे बताया, रोना तो नेचुरल था। मैंने कहा रो तुम, दबाना नहीं चाहिए ना, रो लो एक बार। किसके आगे रोए बेचारी, सब ज्ञान दिया हुआ सबको, अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ, अब रोए कहाँ से, मुश्किल हो गई। मैंने कहा नहीं, देखिए इसमें इस शोक को अपने अंदर समाना नहीं है, इसको निकाल दो। बहुत बुरी चीज थी ना, बुरी नहीं थी वो, छोटी आयु की, लेकिन संभाला बहुत उसने अपने को। ऐसी अचानक परिस्थितियां आती हैं जीवन में। नौकरियां चल रही बहुत अच्छी, अचानक कंपनी ने आदेश निकाल दिया इतने लोगों को बाहर, अच्छे अच्छे नौकरी वाले बेचारे परेशान। होता है ना बहुत कुछ, परिवार में कुछ भी आ जाता है, किसी की अचानक मृत्यु, प्रियजन की मृत्यु, अचानक एक्सीडेंट। अब जब प्राकृतिक प्रकोप होंगे तो संसार में हाहाकार हो जाएगा, रोने को भी नहीं मिलेगा, ऐसा हाल हो जाएगा। जब हम छोटे थे तो बताया करते थे, चेचक फैलती थी, स्मॉल पॉक्स का, गांव के गांव खाली हो जाते थे। एक को मृत्यु हुई उसको जला के आ रहे दूसरे की मृत्यु, उसको जला के आ रहे तीसरे की मृत्यु, लकड़ी भी नहीं होती थी, क्या करें। का रोना ही छोड़ दिया था लोगों ने, कि भाई चलते रहो, बस जलाते रहो, चलने दो, यही हाल होगा। प्रकृति के प्रकोप इतने भयानक होंगे कि स्वीकार करना ही पड़ेगा, कुछ नहीं किया जा सकता, चलने दो। तब तो सबको मानना ही पड़ेगा, जाने का समय आ गया है। लेकिन वो जो मोहममता है वो क्या कर देगी, डिप्रेशन में ले आएगी सबको, स्थिति को कायम नहीं रख पाएंगी आत्माएं। तो लंबे समय से बहुत अच्छा अभ्यास करना है। अब हम एक तीसरे चिंतन पर आते हैं। समस्याओं की तो हजारों हो सकती हैं, किसके पास कैसी आ जाए। चल रहे हैं आप, पैर फिसल गया, टांग टूट गई, वो तो के साथ होता है, बेचारे अच्छे भले हॉस्पिटल में जा रहे हैं। अब हम कैसे स्वयं को शक्तिशाली बनाएंगे? बनाना तो है हमें शक्तिशाली, क्योंकि जितनी शक्तियां हमारे अंदर होंगी उतना ही हम अचल अडोल रहेंगे। केवल उस टाइम चिंतन करने से काम नहीं चलेगा, ये छह की छह बातें हम याद भी करते रहेंगे और योग की शक्ति नहीं होगी तो ये लगेगा खाली हम ऐसे ही अपने को खुश कर रहे हैं, बाबा साथ है ही नहीं। बाबा कहेंगे तुम तो मदद ही नहीं करते हो। बहुत लोग तो बाबा से ही नाराज होते हैं ना, मैंने बाबा को कितनी बार कहा बाबा नौकरी दिला दो, दिलाता ही नहीं, कहता तो है मुझे सुनाया करो, मैं तो बहुत बार सुनाया, मैंने कहा नौकरी बाबा दिल थोड़ा ही दिलाता है ये तो उस कंपनी के जो अधिकारी हैं उनका काम होता है भाई, बाबा थोड़ा ही, हाँ ये करो कुछ तो बाबा मदद करेगा। तो बाबा को शिकायत करने की जरूरत नहीं, क्यों नहीं, बाबा का ये महावाक्य याद करेंगे, अब है बाबा साथी और बाद में हो जाएगा साक्षी, ये भूलना नहीं है। ये बाबा का ही महावाक्य है कि ये नियम नहीं है कि परीक्षा के समय टीचर मदद करे, ये नियम नहीं है। आज भी छुप छुप के ही करेंगे मदद, प्रत्यक्ष में नहीं कर सकते। तो बाबा की मदद लेने का समय अब है। इसलिए जिनको अपने को अचानक के पेपर में पास कराना है उनका योग कितना, 4 घंटे से ज्यादा, 8 घंटा सुन के तो डर जाते हैं सब, 4 घंटे से ज्यादा अवश्य होना चाहिए, और वो भी कर्म करते हुए स्मृति स्वरूप हो जाएं हम, वो बहुत अच्छी योग की एक नेचुरल स्थिति है। उस पर हम चर्चा कर चुके हैं पीछे, और सबको खुशी हुई होगी जब बाबा की पहली लाइन क्या थी, आज बाप दादा स्नेही और स्मृति स्वरूप बच्चों की सभा देख रहे हैं। तो जरूर बहुत सारी आत्माएं स्मृति स्वरूप रही होंगी ना, क्लास एक दिन पहले ही हुई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि भगवान तक हमारी क्लास पहुंच रही है। आज तो कहा था ना मैं सुनता हूँ तो पहुंच रही है, और सभी उस स्थिति में बैठे थे। तो 4 घंटे से ज्यादा योग युक्त जीवन, उसके बिना शक्ति नहीं आएगी, उसमें भी पावरफुल योग भी होना चाहिए। एक प्रैक्टिस, सर्वशक्तिवान से हम स्वयं में शक्तियां समाते चलें, एक विधि। दूसरी छोटी विधि निकालेंगे जो हमें शक्तिशाली बनाती हैं। दूसरी विधि बाबा के महावाक्य, अगर तुम्हें ये भी याद रहे कि सर्वशक्तिवान मेरे साथ है तो उनकी शक्तियां तुम में प्रवेश करती रहेंगी। बहुत सुंदर बात है ये, सर्वशक्तिवान मेरे साथ है या सिर के ऊपर छत्र छाया है, ठीक है, इसकी बहुत प्रैक्टिस करेंगे। तीसरी चीज स्वमान, कौन कौन से बोलो, स्वमान बोले जो हमें शक्तियां देते हैं, जो हमारी सोई हुई शक्तियों को जगाते हैं। पहला तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, दूसरा मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, तीसरा मैं विजय रतन हूँ, 3 बहुत पावरफुल हैं, चौथा भी है पवित्रता का, चौथा पवित्रता का, उससे हमें शक्तियां मिलती हैं। ये स्वमान भी हम बहुत अच्छी प्रैक्टिस में लाएंगे। चौथी चीज किससे बचेंगे, किससे बचेंगे, व्यर्थ से, क्योंकि व्यर्थ हमारी शक्तियों को नष्ट करता है। और व्यर्थ में दो चीजों से इस बार विशेष बचेंगे, क्योंकि व्यर्थ तो सागर की तरह है। ये कहने से तो काम नहीं चलेगा कि व्यर्थ संकल्प न चलाओ, ऐसा कहने से काम चल जाता तो अब तक सबके रुक गए होते। पर चिंतन और पर दर्शन दोनों से स्वयं को मुक्त करना है। बोलो, हो सकता है? बड़ा निचुलल रूप से चल रहा है, पता भी नहीं चलता मनुष्य को कब चल गया। पर चिंतन, दूसरे का चिंतन या दूसरे की चिंता, सोच ले हम क्या याद रखेंगे इसके लिए। क्या मैं पर चिंतन के लिए बाबा के पास आई हूं, पहला संकल्प अपने को देंगे। दूसरा संकल्प, बोलो दूसरा, जो पुरुषार्थ करते हैं पर चिंतन से मुक्त होने का वो सुनाएंगे। दूसरा, हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, मुझे सोचने की कहां जरूरत है। अब डायरेक्टर ने किसी को क्रोध करने का पार्ट दे दिया हो और मैं परेशान हूं, क्यों क्रोध कर रहा है, उसको तो पार्ट मिला हुआ है ना। सबका अपना अपना पार्ट। तीसरा, किसी का पर चिंतन करने से भला मुझे क्या मिलेगा, उसे फायदा होगा या मुझे, या दोनों को ही नहीं। हम किसी को बदल ही नहीं सकते, ऐसा क्यों कर रहा है। प्रदर्शन भी साथ में। अब हमें केवल स्वयं को देखना है। जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं, आप में से जो पढ़ाई में अच्छे स्टूडेंट रहे हैं, क्या वो डल स्टूडेंट्स को फॉलो करते हैं? बिल्कुल नहीं। उनका अपना लक्ष्य होता है, अपनी दृष्टि होती है, वो किसी को नहीं देखते। बल्कि दूसरे डल हों तो खुश होते हैं, क्यों, ये मेरे ही ज्यादा नंबर आएंगे, ये तो डल हैं। तो हम भी ओनली स्टूडेंट हैं, हम खुश तो नहीं होंगे हमारे साथी डल हों, परंतु हम दूसरों को न देखें। दूसरे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इससे थोड़ा ऊपर उठेंगे। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो दिखाई देती हैं, देती है ना, देती हैं। अब कोई अच्छा व्यक्ति गुस्सा ही कर रहा हो, दूसरों को बुरा बोल रहा हो, तो सबको दिखाई सुनाई देता है। क्या करेंगे इसमें? इसमें हल्के साक्षी भाव, ये इनका पार्ट, ये इनकी स्थिति। हमें इसमें कुछ, हमारा कोई कंसर्न ही नहीं इससे, हम अपनी स्थिति में, ये इनका अपना स्वरूप। तो न उससे हम डिस्टर्ब हों और न उसका हमारे अंदर चिंतन चलता रहे, दोनों बातें हमें पक्की कर देनी है। तो ध्यान दें सभी, हमारा किसके बारे में चिंतन बहुत चलता है, और ये अच्छी तरह महसूस कर लें। जो ज्ञान वाले पुराने हैं वो तो जानते ही हैं, इससे हमारी आंतरिक शक्तियां बहुत नष्ट होती हैं। कोई कितना भी योग कर ले, लेकिन अगर वो परचिंतन में है तो योग व्यर्थ चला जाता है, शाम तक सारा खाली। कई लोग ऐसे भी होते हैं, हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति रहते थे, हम दोनों एक साथ समर्पित हुए और उनका नियम था सवेरे 3 बजे उठ जाना, और वो अपने कमरे में दूसरों को भी नहीं सोने देते थे 3 के बाद। 3 बजे सफेद लाइट, तुम भी जगो हम भी जगे, तुम्हारा योग लगे ना लगे अब उठ जाओ। लेकिन हुआ क्या, सबको पता है किसी की बुराई नहीं, उनकी स्थिति बनी ही नहीं। सोचने की बात होती है। कल किसने मेरे से प्रश्न पूछा, एक अच्छी टीचर आई, कि हमारे यहाँ बहुत लोग बड़े योग में रेगुलर हैं, मैं उन्हें क्या करता हूँ, नेमिनाथ हैं। नेमिनाथ ऐसे जैनियों के बहुत बड़े तीर्थंकर हुए हैं, उनकी बात नहीं, मतलब जो नियम तो निभाते हैं आजकल कि भाई 2-4 बजे बाबा कमरे में बैठना ही है, 3:30 बजे बैठ के सबसे आगे बैठे हैं। एक माता हमारे पास ऐसी है, अभी है, उसको 2 बजे उठना है रोज, स्नान आदि करके 2:30-3 बजे वहीं योग कक्ष है उसमें जा बैठना है और जाते ही सो जाना है, रोज का नियम है उसका। लोग उसे जगाते रहते हैं, लोग तो बाद में जाएंगे कोई 3:30 कोई 4:15 कि माता अपने कमरे में जाके सो जाओ, ठटो योग करना है मुझे, तो इससे क्या होता है, योग तो नहीं होगा। अब दूसरों को अब सब ने साक्षी हो गए कि भाई इसका काम आना है रोज, उसके आने के भी नंबर हैं, प्रभु जी के पास अटेंडेंस लग जाती है, सबसे पहले कौन आया मेरे पास लेकिन आके किया क्या, उसके भी हैं। तो योग अच्छा हो लेकिन शक्तियां जमा हो, बह न रही हो, लीकेज न हो, तब हम शक्तिशाली बनेंगे। तो ध्यान देना है, कोई चिंतन ऐसा वैसा नहीं। और अगली बात, 5वीं आ गई होगी, शक्तिशाली संकल्प के द्वारा हम शक्तिशाली बनेंगे। बहुत लोग निराश रहते हैं जीवन में, निराशा को हटाना है शक्तिशाली संकल्प। बातें तो ऐसी आती हैं जीवन में जो मनुष्य को निराश करती हैं। कल मेरे पास 2 युवक आए, दोनों हाईली एजुकेटेड, कई कई डिग्री ली हुई, नौकरी नहीं मिली बेचारों को, बहुत उदास थे, बहुत उदास निराश। मैं से पूछ रहे थे, उनकी निराशा उनके चेहरे पर आई हुई थी, पूछ रहे थे क्या करें। एक ऐसी स्थिति होती है ये, जब अच्छे अच्छे बहादुर लोग भी निराश होते हैं, डाउन होते हैं, क्योंकि ऐसी चीज है, किसी ने, अब कोई गरीब घर से ही हो और बहुत मेहनत करके पैसे का अभाव देखकर पढ़ाई की हो, MBA तक किया हो और नौकरी न मिल रही हो तो बहुत भारी लगता है। ऐसे में भी अपने मनोबल को डाउन न करना, बाबा के विश्वास को डगमगाना नहीं, और कोई राह निकाल लेना योग बल की, वो आवश्यक होता है। और ये याद रखना है, योग ऐसी सबसे बड़ी शक्ति है जिसके आगे कोई समस्या ठहरेगी नहीं। योग से बड़ी शक्ति चारों युगों में कोई नहीं होती है। तो हम शक्तिशाली संकल्प क्रिएट करें। शक्तिशाली संकल्प हमारे स्वमान के ही हैं, बहुत उनसे जुड़े हुए। संसार में तो लोग शक्तिशाली संकल्पों को जानते ही कम हैं। देखो, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, मुझे 100 लोग मेरे जैसे मिल जाएं, जिनकी भुजाओं में शक्ति हो, जो ब्रह्मचर्य में बहुत दृढ़ हो, मैं संसार को हिला दूं। उन्हें तो नहीं मिले, लेकिन बाबा को बहुत मिले हैं, हजारों मिले हैं, लाखों में से हजारों हैं ऐसे सशक्त शक्तिशाली आत्माएं। तो प्योरिटी बहुत बड़ी शक्ति है, विजय हमारी ही होगी। जिस मार्ग पर हम चले हैं, हमें उससे कोई हटा नहीं सकता, यह है शक्तिशाली संकल्प। आज हार हुई है, कल विजय अवश्य होगी। आज जीवन में कांटे हैं, कल फूल अवश्य उगेंगे। आज हमें असफलता हो रही है, लेकिन सफलता हमें ही मिलेगी। ये सुंदर संकल्प करते रहना है। स्वमान से जुड़े हुए बहुत शक्तिशाली संकल्प हमारे पास हैं, और हमारे पास तो सबसे बड़ा शक्तिशाली संकल्प यही है कि भगवान हमारा साथी है। गीत गाते रहे अंदर में, कौन सा, ईश्वर अपने साथ है। हाँ, आगे डर की बातें बहुत आएंगी, लिए गीत पक्का कर देंगे, सब पक्का कर दें, गुनगुनाते ही रहें, अंदर चलता रहे, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। अर्थक्वेक मनुष्य को हिला डालेंगे, नीचे का माल ऊपर आएगा ना, सब ऊपर की गंदगी नीचे जाएगी, हमारे फायदे के लिए होगा लेकिन कष्ट भी बहुत होगा। नीचे सारा माल दबा हुआ है, वो ऊपर हमारे लिए आएगा, और ऊपर वालों की खाद जमीन को मिलेगी। कितना सुंदर प्लान है प्रभु का, कि तुम पापी हो या कुछ भी हो, तुम्हारी खाद बना के भी काम करा दूंगा सत्युग के लिए। और तुम पुण्य आत्मा हो तो तुम महान बनकर सतयुग पे राज करेंगे। तो ऐसे शक्तिशाली संकल्प हम अपने मन में क्रिएट किया करें। एक छोटी सी बात माताओं के लिए कहना चाहता हूं, माताएं बहुत बैठी हैं, दूसरों की चिंता न करके कुछ समय जरा अपनी चिंता कर ले तो बहुत अच्छा हो जाएगा। माता बैठी होगी यहां, मेरे से अभी मिली कि मेरी दो बहू मेरे से बिल्कुल एंटी रहती है। अब है ये तो समस्या, मैं तो हंसी में एक बात कही, माताओं को बुरा ना लगे तो कह दूं कहा बहुत जलती है मेरे से। मैंने कहा वो नारी क्या जो जले नहीं। नारी दूसरे को आगे बढ़ता देख खुश हो जाए तो फिर फायदा क्या हुआ उसका। भाई लोग थोड़े कोई बहनों को परेशानी हो गई है। ये तो मैं उसको हंसी में कहा, मैं कहा मस्त रहो, क्यों परेशान हो रही हो, वो तुम्हें देख के खुश नहीं होती, तुम बाबा को देखकर खुश रहो, तुम्हें भगवान मिल गया। और क्या है कि बातें तो हैं, अब कौन नहीं चाहेगा मेरी दो बहू मुझसे खुश रहें, आपस में प्यार हो, सम्मान हो, अपनापन हो, कौन नहीं चाहता। लेकिन जब नहीं है तो क्या करें, दूसरों को बदलना तो किसी के हाथ में नहीं है ना। ईर्ष्या द्वेष छोटे विचार बहुत रहते हैं ना जीवन में, इसलिए इनसे ऊपर उठ जाए तो एक है बस, सभी के लिए है, केवल माताओं के लिए नहीं। अपनी स्थिति श्रेष्ठ होगी तो परिवार की स्थिति भी श्रेष्ठ रहेगी, चाहे आर्थिक दृष्टि से हो, चाहे व्यवहारिक दृष्टि से हो, चाहे लवफुल संबंधों की दृष्टि से हो, हमारी स्थिति अच्छी रहेगी तो सब कुछ अच्छा रहेगा। ये भगवान वाच है, ये उसका फॉर्मूला है कि तुम दूसरों को बदलने के लिए अपनी स्थिति न बिगाड़ लो। ये बहुतों के साथ हो रहा है, दूसरे नहीं बदलते तो हम परेशान, हमसे भी योग नहीं हो रहा है, इससे दोनों को नुकसान, हमें भी और उनको भी। हम महान हैं, पूर्वज हैं, हमारी स्थिति, याद है बाबा के महावाक्य, तुम्हारी स्थिति से सृष्टि की स्थिति बनती है। सृष्टि कैसी रहेगी वो आधार है तुम्हारी स्थिति पर। जब तुम पावन हो तो सृष्टि में सुख शांति है, जब तुम पुण्य कर्म करते हो तो चारों ओर प्रेम सुख शांति आनंद की गंगा बहती है, और जब तुम नीचे उतर जाते हो तो चाहते हुए भी लोग सुखी नहीं हो पाते हैं। तो अपने को शक्तिशाली बनाना है। अब सभी सोच लेंगे आने वाले जो चैलेंजेज होंगे जीवन के, बहुत चैलेंजेज होंगे ना, उन्हें हमें पार करना है। तैयार करें अपने को, पहली बात ये संकल्प निकाल दें कि हम भगवान के बन गए तो हमारे सामने समस्याएं क्यों आती हैं। निकाल दें ये संकल्प, ये संकल्प आपको कमजोर करेगा। बल्कि ये कर ले, भगवान के बने तो परीक्षाएं ज्यादा ही आएंगी। क्या विचार है कन्याओं का, तैयार है देने के लिए? देखो बड़ी नौकरी चाहिए तो परीक्षा छोटी देनी होगी बड़ी। अब विश्व महाराजन का पद चाहिए तो परीक्षाएं तो बड़ी देनी ही पड़ेंगी, और छोटा मोटा चाहिए तो कोई बात नहीं, कह दो भाई परीक्षाएं नहीं चाहिए हमें, हम तो छोटे ही ठीक हैं। लेकिन परिस्थितियां हर एक के पास आएंगी, क्योंकि कर्मों का हिसाब किताब सबका पूर्ण होना है। इसलिए अब ये दूसरी बात है कि बड़े हो या छोटे हो, उच्च पद वाले हो या कम पद वाले हो, परीक्षा सबको देनी है। तो ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि बाबा के हम बन गए तो परीक्षाएं क्यों आ रही हैं, बल्कि ये सोचना है बाबा हमारे साथ है तो हम परीक्षाओं को पार कर लेंगे। हमारी जीवन नैया का खिवैया स्वयं भगवान है, क्यों आ रही नहीं, उसकी शक्तियां हमारे साथ है, हम पार करेंगे। बस ये ध्यान रखना है कि परिस्थितियां हमारी खुशी को छीन न ले जाएं। परिस्थितियां हमारे उमंग उत्साह को नष्ट न कर दें, परिस्थितियां हमें बिल्कुल अपनी स्व स्थिति से डाउन न कर दें। तो ये बातें जो हमने पहले की इनको याद करते हुए अपने को पक्का कर दें, परिस्थिति आएंगी और मुझे उस टाइम ये सोचकर अचल अडोल रहना है। अपने पास वो दो चार बातें पक्की करेंगे जीवन में, तो इससे क्या होगा, हम पावरफुल हो जाएंगे तो परिस्थितियों का फोर्स डाउन हो जाएगा। समझ रहे ना सभी कुमार, परिस्थिति प्योरिटी इम्प्योरिटी की भी आ सकती है, परिस्थिति साथियों के क्रोध की भी आ सकती है, जो आज की मुरली थी बाबा की, परिस्थिति संबंधों में मन मुटाव की भी आ सकती है, जो बड़ी खतरनाक होती है। होती है नहीं, चार लोग आपस में रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, मान लो मन मुटाव है तो न सुख रहेगा, न खुशी, न योग लगेगा। तो मन मुटाव को अवॉइड करना है, कोशिश करनी है हमारे कारण कोई डिस्टर्ब न हो, हम किसी के कारण डिस्टर्ब न हो, दोनों बातें रखनी है। संगठन में रहते भी हैं, कहीं कहीं तो ऐसा होता है एक रूम में दो ही लोग रहे हुए हैं, दोनों के मुंह अलग अलग दिशाओं में रहते हैं। ये नहीं कि बात नहीं करते, पर अगर बात करते हैं तो ऐसी खतरनाक करते हैं कि दोबारा करनी न पड़े। जरा अपने को ठीक करना है, हमारा जीवन सुखदायी हो जाए, साथियों को तो सुख देना है ना। याद है ना बाबा की बात, मैं बहुत सुनाता हूँ, मुझे बड़ी मजेदार लगी थी। उन देवियों के मंदिर में पुजारी नहीं होते जिन्होंने, सीमा बहन, जिन्होंने अपने साथियों को प्यार नहीं दिया। उनके मंदिर की कोई सफाई भी नहीं करता, आप ही करो। देवी आए और मंदिर की सफाई करे। तो अपने साथियों को अपनापन देना, छोटी मोटी बातों को अवॉइड करना। आजकल फोन भी माया आ गई ना, कैसे रात को 11 बजे घंटी बज रही है, आवाज से बात कर रहे हैं, पड़ोसी भी सुने क्या बात हो रही है, नहीं तो कहेंगे कि इसका फोन आ गया, पता नहीं प्राइवेट। इले पड़ोसियों को भी सुनाते हैं, सबको जगा देते हैं, ये अच्छा नहीं है। जब हम संगठन में हैं, अपने फोन्स को बंद कर लेना चाहिए या नहीं, करना चाहिए या नहीं, कर लेना चाहिए। जिनको राजा बनना है उन्हें दूसरों का ध्यान रखना ही चाहिए, नहीं तो राजा ही संस्कार है ही नहीं। राजा वो जो दूसरों का बहुत ध्यान रखे, उनकी पालना करे, उनके सुखों का ध्यान रखे। मुझे तो अपना करना है, फोन आ गया मुझे तो अटेंड करना है, ये भी नहीं कहना भाई कल कर लेना, सवेरे अभी करो बात, ये नहीं। सब समझदार बने इसमें, कई ये गलती करते हैं, अपने साथियों का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं, नहाने धोने पे भी ऐसे ही करते हैं, मुझे तो कपड़े धो के ही निकलना बाथरूम से, तुम भले खड़े रहो बाहर, ये भी नहीं। ध्यान देना है, हमारे सामने माताएं ठहरती हैं कभी कभी, जब भी हम उठ जाओ उनकी आवाज लड़ने की आती रहती है, दरवाजा ठक ठक करने, खोलो जल्दी, वो अंदर वाली सुनती नहीं, वो अपना कपड़े धो रही है। ध्यान देंगे, दूसरों का भी ध्यान देना, इसलिए एक स्लोगन रख लें, ये स्लोगन दुनिया में नहीं है, हम साथियों का ध्यान देंगे तो भगवान हमारा ध्यान देगा। इसका बहुत अच्छा अभ्यास करना तो सब स्वयं को बहुत शक्तिशाली बनाएंगे। स्मृति स्वरूप होने से, परसों की मुरली में था,
ओम शांति
शांति,
ओम शांति
शांति।
अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राज पथ पर चल कर तुम पालो अपना बसेरा।
हमारा ध्यान देगा, इसका बहुत अच्छा अभ्यास करना तो सब स्वयं को बहुत शक्तिशाली बनाएंगे। स्मृति स्वरूप होने से परसों की मुरली में था, समर्थि स्वतः ही आ जाती है, और जहाँ समर्थ है वहाँ व्यर्थ नहीं है। एक और सुंदर बात पे थोड़ी सी चर्चा कर लें, सबको संतुष्टता का बोलो आगे वायुमंडल बनाना है, अपने अपने घर में, अपने अपने सेवा केंद्र में, अपने अपने डिपार्टमेंट में, अपने अपने कमरे में, जहाँ इकट्ठे रहते हैं सब काम करते हैं, वहाँ संतुष्टता का वातावरण बनाना है। देखो हम कलयुग से ऊपर उठ गए हैं, कलयुग में तो किसी भी डिपार्टमेंट में लोग एक दूसरे को साथ नहीं देते, ऑफिस में मौका मिलते ही इसकी यहाँ कमजोरी है उस पे कमेंट्स चालू कर देते हैं, इसको गिराओ, इसको ऊपर वालों की नजरों में बदनाम करो, ऑफिसर्स के आगे इसकी रिपोर्ट भेजते रहो। दुनिया में तो ये सब बहुत चलता है, लेकिन जहाँ अलौकिकता है, जहाँ सब ज्ञान युक्त आत्माएं रहती हैं, जहाँ सब महान आत्माओं का वास है, वहाँ संतुष्टता का माहौल बना देना है, जहाँ सबका रहने को जीने को मन करे, जहाँ सभी बहुत प्यार और आनंद से कार्य करें। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ, लौकिक परिवार का देता हूँ, यज्ञ वालों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एक घर में शादी हुई, बच्चे की बहू आई, तो चार दिन के बाद उसने खाना बनाया, खाना अच्छा नहीं बनाया, सास उस पे डंडा लेके चढ़ गई, बेलन, क्या सिखाया तुम्हारी माँ ने, और उसको जली कटी सब सुना दी। अब बेचारी का मूड ऑफ हुआ, कहा मैंने इतना मेहनत की, खाना अच्छा नहीं बना, आज गलती हो गई मेरे से। अगले दिन जब वो काम करेगी तो क्या होगा उसके हाथों को, फिर मान लो उससे कुछ गड़बड़ हो गई और वो बोछार अगले दिन भी हुई, तो तीसरे दिन उसकी कार्य क्षमता 50% डाउन, और उसे काम नहीं होगा, वो भय भयभीत होगी। और अगर सास बहुत पावरफुल है तो वो कहेगी कहाँ फंस गई मैं, घर में ही अच्छी थी, कुमारी रहना अच्छा था, बाबा की अवज्ञा कर दी मैंने तो बड़ा मुश्किल हो गया। ये सच्ची कहानियां सुना रहा हूँ भाग्य की। किसी भी डिपार्टमेंट में हमारे साथ ही गलती कर सकते हैं, गलती मनुष्य करता है या गाय भैंस, गलती उसी से होगी ना जो काम करेगा, जो कुछ कर ही नहीं रहा उससे गलती क्यों होगी, जो जिम्मेदारी संभालेगा उसी से तो भूल हो सकती है ना। तो हमारे साथियों से गलती हो सकती है, लेकिन हमें उनकी एफिशिएंसी को, उनकी कार्य शक्ति को डाउन नहीं करना है। और इसकी क्या कला बाबा ने सिखाई, एनकरेज करो, उमंग दिलाओ, जरा वाह वाह करो, उनकी विशेषताएं देखो, उन्हें आगे बढ़ाओ, गलती हो गई सिखा दो। माताओं को भी ये काम करना है, किसे गलती हो गई, यहाँ भाई रोटी ऐसी ऐसे बना लो, कोई बात नहीं, ये जली हुई मैं खा लेती हूँ, आप ऐसा कहो देखो, अगले दिन क्या वो जली हुई खुद खाएगी, आपको अच्छी अच्छी देगी। बहुत अप्रिशिएट करना, एनकरेज करना, जिस घर में एप्रिसिएशन की प्रैक्टिस है सबको, सब एक दूसरे की महिमा गाते हैं, वाह वाह करते हैं, एक दूसरे को एनकरेज करते हैं, उमंग उत्साह दिलाते हैं, प्रोत्साहन देते हैं, जहाँ छोटी छोटी बातों को रिजेक्ट कर दिया जाता है, इग्नोर, उस घर में बहुत संतुष्टता का माहौल रहता है। सेंटर्स में भी ये काम करना है, परिवारों में भी, और हमारे सब डिपार्टमेंट्स में भी। अगर 10 लोग काम कर रहे हैं, सब एक हो जाएं, एक दूसरे को सिखाएं, ये जो एक होड़ संसार में चलती है उस होड़ से पीछे निकल जाएं। कौन सी होड़ चलती है, इंचार्ज बनने की, सीधी भाषा बोल रहे हैं। मैं कभी कभी कहा करता हूँ, मैं भी कभी कभी कड़वे प्रवचन कर देता हूँ, नाराज हो जाते होंगे लोग, इंचार्ज बनने की होड़। एक बहन को मैंने कहा, अरे बहन बाबा इतना कह रहा है योगी बनो, ये छोड़ो ना सत्ता का संघर्ष, का योगियों को कौन पूछता है, सत्ता चाहिए। उसे बिल्कुल रियलाइज नहीं था कि बाबा क्या चाहता। अभी बाबा ने कहा, जो बाप चाहता है बाप समान बनो, मन वचन कर्म संबंध संपर्क में जो बाप चाहता है वो करो। सत्ता यहाँ सत्ता है ही नहीं, असली सत्ता है योग की शक्ति, बाकी सत्ताएं तो टेंशन है, सिरदर्दी है, उसके पीछे जो भाग रहे हैं वो अभी भी अंधकार में हैं, ये जान लेना चाहिए, वो प्रकाश में नहीं हैं, उन्होंने वास्तविकता को भी नहीं जाना है, और तब जानेंगे जब सत्यता उनके हाथ से निकल गई होगी, जब समय बहुत आगे चला गया होगा। इसलिए अपने अपने अंदर, अपने संगठन में संतुष्टता का माहौल बनाना ये ईश्वरीय आज्ञा है और मानता है, हमारे संगठन की सफलता है। वैसे हमारे जैसा संगठन संसार में कहीं नहीं है, ये तो सारा संसार जानता है अब कि ब्रह्मा कुमारियों जैसी यूनिटी और किसी के पास नहीं। बातें छोटी हैं, पर जब हम कार्यरत हैं तो एक होते हैं ना, बाबा के लिए काम करते हैं, यज्ञ के लिए काम कर रहे हैं, अपना कुछ नहीं है, निष्काम भाव से सेवा कर रहे हैं, तो किसी को लगता ही नहीं कि कुछ सेवा हो रही है, फटाफट काम हो रहा है। तो बनाएंगे संतुष्टता का माहौल, और कौन बना सकते हैं, एक तो जो खुद संतुष्ट हो, दूसरा दूसरों को आगे बढ़ाने की इच्छा हो, तीसरा सभी के लिए बहुत सुंदर भावनाएं हो। इसी मुरली में और भी था, सबको कौन सी लगन है, दूसरी लाइन थी, दूसरी लाइन विश्व कल्याण की। हम इस बात पे भी ध्यान दें, अपने अंदर ये गुड फीलिंग बढ़ाते चलें, मैं हूं विश्व कल्याणकारी, बहुत हायर कॉन्शियसनेस है ये, मैं विश्व कल्याणकारी हूं, पूर्वज और विश्व कल्याणकारी, मैं, मेरा जन्म ही विश्व कल्याण के लिए हुआ है, मैंने बाबा के साथ अवतार लिया है विश्व का भला करने के लिए, इस प्रकृति को पावन बनाने के लिए, विश्व कल्याणकारी हूँ। बहुत सुंदर बात याद रखेंगे सभी, बहुत सुंदर, अति डीप, तुम्हारी विश्व कल्याण की भावना भी विश्व का कल्याण करती रहेगी, क्योंकि हम इष्ट देव देविया है ना। आज की मुरली में भी ऐसे ही था, वरदान में था, जैसे सूर्य का प्रकाश चारों ओर के अंधकार को नष्ट कर देता है, तुम्हारी शुभ चिंतन के वाइब्रेशंस क्या करेंगे, संसार को चिंताओं से मुक्त करेंगे। सुख संगति है ये, इन पे ध्यान देंगे सभी महानात्माएं। हमारा श्रेष्ठ चिंतन, हमारी शुभ भावनाएं अनेकों की चिंताओं को समाप्त करेंगे, ऑटोमेटिकली उनको बल मिलता रहेगा। हमारी विश्व कल्याण की फीलिंग, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, केवल स्व कल्याणकारी नहीं, मेरा कल्याण हो जाए, मैं आगे बढ़ जाऊं, दूसरे पीछे हट जाए, मेरा नाम हो जाए और किसी को कोई जाने ही नहीं, मैं ही केवल हूँ आगे आगे, बाकी कोई न चमके, ये स्वार्थ की भावना है। विश्व कल्याण, हमारे यज्ञ में सब महान हो जाएं, सब संपूर्ण पावन हो जाएं, सब संतुष्ट आत्मा बन जाएं, सब ऐसे चमकते हुए सितारे बने जिससे संसार का अंधकार दूर हो जाए, सब अच्छे स्पीकर बन जाएं, सबका नाम हो जाए, होना चाहिए नहीं? ये भावनाएं, इसका इफेक्ट बहुत सुंदर होता है। हमें ये भूलना नहीं चाहिए, हमारे वाइब्रेशन से संसार के कल्याण में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। केवल बोल नहीं, जैसे बाबा ने बहुत फोर्स दिया कि कोई भी एरिया बचे नहीं, कोई उलहने न दे, बाप आया, हमारा बाप आया, तुमने बताया ही नहीं, सारा माल खजाना खुद खा गए, हजम कर गए, हमें नहीं बताया, कहेंगे ना खुद सुख ले लिया, हमें पूछा ही नहीं। ऐसी देवकुल की बहुत आत्माएं हैं जो इंतजार कर रही हैं, पुकारती होंगी ना भगवान को, कब आओगे, हे प्रभु जल्दी आ जाओ। और प्रभु जी ऊपर देखते हैं, कहते हैं मैंने जाने की तैयारी कर ली है, ये बुला ही रहे हैं अब तक, ये मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, इन्हें बताते क्यों नहीं, लेका सबको बता दो, काम पूरा करो, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करो, फिर उनका भाग्य हो जाने। तो कितनी बड़ी चीज बाबा हमें कहते हैं। लेकिन ये जो एरियो का बंधन है, इसलिए बाबा ने शब्द यूज किया एरिया, ये एरियो का बंधन बड़ा बुरा है, इससे बाहर निकल के सबको बाबा का संदेश मिल जाए, और जो ऐसा नहीं करने देंगे उन पर ये बहुत बड़ा पाप आ जाएगा। कई ऐसे लोग हैं जो न खुद सेवा करते न किसी को करने देते, उससे यज्ञ में बाधा पड़ती है, उनकी अपनी स्थिति भी डाउन रहती है और अनेक आत्माएं कल्याण से वंचित रह जाती हैं। तो हमें इससे बाहर निकलना है, और हम जो इस फील्ड में नहीं हैं उन्हें अच्छे वाइब्रेशंस देने हैं। संदेश हम वाइब्रेशन से भी दे सकते हैं, रोज सवेरे छोटा सा संदेश योगी युक्त होकर सब आत्माओं को प्रसारित कर दिया जाए, हे देवकुल की आत्माओं जागो, तुम्हारा बाप तुम्हें जगाने आया है, उठो उससे अपना अधिकार ले लो, वो तुम्हें सब कुछ देने आया है। हम ऐसे गुड वाइब्रेशंस फैलाएं संकल्पों के, उनमें जागृति आ जाएगी। तो बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे अब अगले बाबा के मिलन तक, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विजय रतन हूँ, इससे हम शक्तिशाली बनेंगे, हमारी भावनाएं शुद्ध होंगी, और रोज मन के द्वारा सबको संदेश देंगे बाबा का। एक मिनट के लिए रोज सवेरे का एक टाइम फिक्स कर लेंगे बाबा के संदेश के, क्योंकि संकल्पों के वाइब्रेशंस फैलेंगे ना, जैसे रेडियो और टीवी से प्रसारण कर दिया जाता है किसी चीज का, सारे संसार में फैल जाएगा ना, वैसे ही संकल्पों का प्रसारण भी सारे संसार में हो जाएगा, और बहुत आत्माएं उससे कैच कर लेंगी। तो ये भी एक बहुत बड़ी टेक्निक, बहुत बड़ी सेवा हमें चालू रखनी है। अभ्यास करेंगे योग का, दो तीन अभ्यास ले लेते हैं। मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, ग्लोब के ऊपर खड़े होकर सारे विश्व को सुंदर वाइब्रेशंस देना, पहला अभ्यास। विश्व कल्याण से जुड़ जाएगा ये, दूसरा शक्तिशाली बनने से जोड़ देते हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, और सर्वशक्तिवान शिव बाबा सिर के ऊपर छत्र छाया है। तीसरे छोटे से अभ्यास पे ध्यान देंगे। देह से न्यारा अपने को करना है, दो चार बार दिन में ये फीलिंग ले आनी है जैसे ये देह है ही नहीं, केवल मैं चमकती हुई आत्मा निराकार। इसे प्योरिटी का बल बहुत बढ़ जाएगा। मूल्यों में तो थोड़ी पॉइंट्स हैं, इनको याद रखेंगे, तब तक चार पांच ही बातें थी बस, इनको याद भी रखेंगे और बाबा का जो पाठ चल रहा है इसको देखते हुए अब अपनी गति को धीमा नहीं होने देंगे, तैयार होना है, हमें सबको मदद करनी है। ओम शांति। चलें अब बहुत पावरफुल योग करेंगे और हम बाबा को अपनी छत्र छाया बनाएंगे। मैं आधे मिनट में आपको संकल्प देता हूं और उसी तरह की स्थिति में गीत तक सभी स्थित हो जाएंगे। देखें परम धाम में सर्वशक्तिवान ज्ञान सूर्य को। प्यार से आह्वान करें, प्यारे बाबा अपना धाम छोड़कर हमारे सिर के ऊपर छत्र छाया बन जाओ। और अब देखें ज्ञान सूर्य शिव बाबा नीचे उतरने लगे, अपनी किरणें चारों ओर फैलाते हुए नीचे आ रहे हैं। आ गए हमारे सिर के ऊपर छत्र छाया। अब बैठ जाएं इस छत्र छाया में, विशाल छत्र छाया। ये छत्र छाया मानो सारे संसार के ऊपर आ गई है।